हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द सर्च स्टार्ट टुडे पॉडकास्ट। सबसे पहले फ्रेंड्स, यस आई नो कि हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सबको बड़ा सा थैंक यू कहना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि आज स्टार्ट टुडे पॉडकास्ट के अप्रोक्सीमेटली एक साल और एक दो महीने हो गए, लेकिन द स्टार्ट टुडे पॉडकास्ट आज 33 प्लस कंट्री में सुना गया, मे बी 40 कंट्री भी प्लस कर गया होगा, मैंने काफी टाइम से चेक नहीं किया। और आपने इस पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म के काफी बड़े बड़े स्पीकर को सुना है, टेडएक्स स्पीकर, जॉटर स्पीकर्स, द मिलियनर्स एंड द एंटरप्रेन्योर्स एंड द एग्जीक्यूटिव्स लाइक द सीईओ एंड फाउंडर्स एंड एक्सेट्रा, और उन जिनमें से कुछ लोगों को फंडिंग वगैरह भी मिली थी। तो आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसे इंसान को जो कि स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं उनको फंडिंग वगैरह रेज करने में, जो कि एक स्टार्टअप कंसल्टेंट है। सो थैंक यू सो मच देवान सर फॉर ज्वाइनिंग अवर पॉडकास्ट, वेलकम ऑन माय शो।
Thank you. Thanks a lot, Parth. First of all, to invite me on your show, I'm very, very excited. As I told you when we were speaking the other day, I'm really excited to do your podcast. Thank you. आपने मुझे बुलाया, यहाँ पे एक invitation किया, and I'm happy to be on your show. Very, very happy to be on your show, Parth.
Thank you so much, sir. भाई देव फ्रेंड, आपको पता है कि देवान सर हमारे पॉडकास्ट पास सके ओनली लिंक्डइन की वजह से, और जो भी मैंने बड़े बड़े नाम लिए, टेडएक्स स्पीकर, जोस्टर स्पीकर, मिलियनर, वो सभी पॉसिबल हो पाए ओनली लिंक्डइन की वजह से। और आज मैं ओनली 20 इयर्स ओल्ड हूँ, मैं थर्ड ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और मैं खुद से ही सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मतलब कि मुझे मेरे पेरेंट्स से पैसे वगैरह लेने की जरूरत नहीं, वो भी मैं बन पाए ओनली लिंक्डइन की वजह से। तो आज 4 जून को मैं अपने भाई के बर्थडे पे मैंने एक लिंक्डइन ऑर्गेनिक ग्रोथ बुक लॉन्च की है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, अपने फ्रीलांसिंग जर्नी में ग्रोथ चाहिए, अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, और आपको भी बड़े बड़े लोगों के साथ अपनी जान पहचान बने रहते हो, तो आप मेरी बुक प्लीज चेकआउट कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक्डइन की बुक के बारे में मैंने लिंक डाल दी है। सो यस, तो अब आते हैं कि देवान सर पे। सर, सबसे पहले हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपकी कंपनी क्या करती है, आप क्या करते हैं, और आप स्टार्टअप को कैसे हेल्प करते हैं।
ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन पार्थ फॉर योर बुक, फॉर योर न्यू बुक लॉन्च। मुझे भी पता नहीं था ये बुक के बारे में, बट ग्लैड आई हर्ड अबाउट इट। आई विल डेफिनेटली यू नो परचेज दिस बुक एंड डेफिनेटली हैव अ रीड। लिंक्डइन इज अ वंडरफुल टूल टू यू नो एक्सटेंड योर नेटवर्क, टू कम्युनिकेट विद पीपल एंड टू ऑब्वियसली डू बिजनेस और टू गेट जॉब्स ऑल्सो फॉर दैट मैटर। So it's a wonderful platform, and I'm sure you must have written a wonderful book. I'll definitely purchase this one from the link that you provide, or you can share it with me. Yes. So coming to your question, Parth, basically, my name is Devansh Lakhani, as you introduced me very, very warmly, very gracefully. मैं basically a chartered accountant हूँ, Parth. You know, मैंने CA पढ़ा है. 2015 में मेरी CA की पढ़ाई कंप्लीट हुई थी, सो आई कंप्लीटेड इन 2015 एंड यू नो फ्रॉम देयर ऑन बेसिकली आई वेंट ऑन टू वर्किंग एट अ यू नो बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च एडवाइजरी काइंड ऑफ अ फर्म, अ स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, यू नो जहाँ पे मैंने 2.5 साल काम किया। आई वर्क देयर फॉर 2-2.5 years इन द इक्विटी रिसर्च डोमेन, इन कॉर्पोरेट फाइनेंस डोमेन, यू नो वेयर माई रोल वॉज मेजरली to you know prepare equity research reports, talk to managements of listed companies, you know help them with whatever kind of fundraising things also that are required. I used to manage certain institutions and HNI clients funds you know at that company, and used to do deals basically out there. So wo sab maine sikha wahan pe. I used to report to a director directly to the director, who was very, very experienced. So I learned a lot under him, from him, you know, gained a lot of good experience from him. And I used to lead a team of 4-5 analysts under me. So वहाँ पे मैं lead करता था. So वहाँ पे मुझे people skills और leadership skills का थोड़ा experience मिला. काफी कुछ वहाँ से सीखा मैंने. And then in 2018, I started my firm called Lakhani Financial Services. You know, in 2018 of January. And that's where I started with something which I was very, very passionate about from starting, that was into stock markets, into equity research, into handling people's money and their portfolios, and you know advising them on their investments, ki kahan pe aapko invest karna chahiye, basically mutual funds mein, bonds mein, stocks mein to kaun se stocks mein. So wo sab cheez I was really passionate about, isliye maine wo job ki thi, isliye maine wahan pe experience liya tha. और इवेंचुअली देन ये बिजनेस भी जब स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड ऑफ विद दैट। स्लोली स्टेडीली हमें थोड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के डील्स मिलना स्टार्ट किए, तो एक SME IPO किया, एक राइट इश्यू किया, दोनों अराउंड 10 करोड़ के डील साइजेस थे. फिर वी डिड अ ब्लॉक डील ऑल्सो, यू नो, ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 35-40 करोड़ ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ वेरी बिग लिस्टेड कंपनी बेसिकली. तो ये सब चीज वी डिड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. बट स्लोली स्टेडली वो SME का मार्केट जहाँ हम लोग IPO और राइट इश्यू कर रहे थे, दैट वॉज डाइंग डाउन स्लोली एंड स्टेडली. सो यू नो वॉट हैपेंड इज एट दैट टाइम, at the right time I would say, you know, we started getting few approaches and deals. This is approximately मैं 20-22 महीने पहले की बात. यहाँ पे we started getting few referrals of startups. Okay, जो startups को आप help कर सकते हो fund raise के लिए, अगर आप SME IPO कर रहे हो 10 करोड़ के and all those things. So can you help certain startups? So friends and family, relatives से थोड़े approaches मिलना चालू किए. तो वहां से देन आई अंडरस्टूड के व्हेन आई वाज वर्किंग विद स्टार्टअप्स, या मैं उनके जब यू नो प्रोफाइल्स या जो डेक्स बोलते हैं, इन्वेस्टर डेक, पिच डेक जो बोलते हैं, वहां पे यू नो इट इज रियली नॉट, देयर इज अ बिग गैप जहां पे जो प्रमोटर्स या फाउंडर्स होते हैं स्टार्टअप्स के, दे आर रियली नॉट अवेयर के इन्वेस्टर को अप्रोच कैसे करना है. ओके, दे डोंट नो के हाउ टू प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान, हाउ टू प्रिपेयर अ पिच डेक. They are not really very well versed with that. Okay, finance department mein they are not well versed. They are good, very good in product development, technology ke baare mein unko aap kuch bhi poocho to they are extremely well versed with their concept, with their you know pure unke know how ke andar. But jab business sense ki baat aati hai ya finance sense ki ya investment regarding baat aati hai, so there was that lack in the founders jo mujhe pata chala, and I understood ke there are many so-called investment advisors जो ये सब founders से, you know, they take humongous money, मतलब सीधा 1 lakh rupees मांगते हैं to take as mandate fees or something, और guarantee देते हैं we'll raise funds and everything. तो ऐसे कुछ मेरे founders के साथ interaction हुई तब, जो you know ऐसे सब चीज से वो लोग ठोकर खा के they're still not been successful and they're not got advice. चलो fundraising is a difficult thing, but they're not got genuine advice also. So that's where I thought that there is a big gap, and that's where then I thought that, you know, this is somewhere which is a good niche place. So, hum hamara investment banking or advisory domain mein we can focus out here. Okay. So that's where we started focusing deep down in the startup advisory over the last 18 months. So pehle 3-4 mahine yahi sab samajhne mein chale gaye ki ecosystem kaisa hai, kaun se type ke log hai, investor kaise hai. Unse thoda baatcheet kiya, mile thode mentors se, I spoke. I understood what do they ask, what do they want from startups. I met founders, so founders se samjha what do they looking for you know in to raise funds or something, what are they looking at basically. So this is what they are looking at basically, you know, to do this kind of a fundraising basically. So wo gap ek tha which I thought, you know, is something that we can fill it up. And hence we started then full-fledgedly helping startups and advising them on the fundraising aspects, okay, on their whole fundraising journey. So now we have a complete bouquet of services jo hum startups ko offer karte hai, and where we are specializing and we want to dominate in that sector, right? So what we do is right now, when a startup approaches us for the fundraising, okay, we have a couple of criteria to onboard them. We see whether they are tech enabled, and we see whether they have traction to attract investors. Okay, because investors want that kind of traction. So hum log wo cheez dekhte hain ki traction hai nahi hai, and then we onboard them. Then we work with them to help them prepare a business plan. We prepare a beautiful pitch deck for them, jo investors ko impress karta, and then we take them to investors on calls and everything, and help them you know close the deals out there. तो अभी तक हमारे 4 स्टार्टअप्स ने फंड रेज किए हैं, यू नो वी हैव रेज्ड फंड्स फॉर दीज स्टार्टअप्स जो हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं. अभी 5th स्टार्टअप का डील इज गोइंग ऑन राइट नाउ, आई वोंट बी एबल टू रिवील अ लॉट अबाउट दैट, बट दैट इज इन द एडटेक सेक्टर. सो दैट डील इज अंडरगोइंग करेंटली. सो आई कैन वेरी प्राउडली से के आउट ऑफ दीज 5 स्टार्टअप्स, 4 स्टार्टअप्स आर ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम. And one startup was obviously last year pre-COVID, मतलब Jan Feb के दौरान था. So you know we've been able to raise funds during these tough times. We've been able to advise over 50 startups across this whole journey of startup advisory. Or, you know, we are working with them day in, day out, learning new things about new industries, new sectors, new businesses, new ideas, and more importantly, interact kar pa rahe hum naye founders se, entrepreneurs se, jo technology ke dwara, you know, they are trying to change the society in which we are living with the products and the services that they can bring, you know, on the ground, basically. So that is what we are doing in the startup advisory and the startup space.
Oh, amazing sir, amazing. मतलब कि आपने कहा कि चार स्टार्टअप को आपने फंडिंग दे दी है और एक स्टार्टअप को और भी मिलने वाली एक आध बन के. इट्स रियली अमेजिंग. मैंने एक्चुअली मैं भी स्टार्टअप फील्ड से और मैंने भी 8 से 10 इन्वेस्टर को वगैरह को पिच किया है तो मुझे पता है कि इट्स रियली हार्ड. इट्स नॉट इजी. आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं. तो सर आपकी कंपनी है वो एग्जैक्टली मतलब कि ओनली स्टार्टअप के लिए ही काम करते हैं या फिर मतलब आप दूसरा भी काम करते हैं जैसे कि दूसरों का पोर्टफोलियो मैनेज करने का, उनको फंडिंग वगैरह की एडवाइस देने का या फिर स्टॉक मार्केट की एडवाइस देने का ऐसा कुछ?
So par humne that we have really reduced that side of the business to a large extent. We are now majorly focusing on, main bol sakta hu 98% we are focusing on the startups advisory. Okay, startups investment banking fundraising for startups. Aur hamara jo other part of the business tha jisse humne start kiya tha, that we have reduced it significantly, matlab, you know, it's next to negligible. Abhi hum jo karte is very, very basic on that part, where we are handling, you know, the existing portfolios on the mutual fund side of our clients, existing clients. Hum zyada wahan pe focus nahi kar rahe, to be honest. So we are focusing majorly on this particular side, on the startups advisory side. Right? Hum mentoring bhi karte startups ki, sorry, main previous mein batana bhul gaya. We mentor startups to take them to the traction stage. Matlab, just mentoring program where we mentor startups also to take them to the traction stage.
Okay.
So, jahan pe basically, you know, where the product is ready but they are looking for traction. So, we have that traction mentoring program also, wherein I personally mentor. So, that is also one part of, you know, what we do with the startups.
Yes. मतलब कि सर आपका इकोसिस्टम ऐसा बन गया है कि मुझे सिर्फ स्टार्टअप में काम करते हैं. बाय द फ्रेंड्स आपको पता नहीं होगा, देवान सर की प्रोफाइल पे मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि उनका विजन है कि 1000 स्टार्टअप्स को हेल्प करना है. वो ही बहुत बड़ा रीजन है कि दैट्स व्हाई देवान सर इज हियर ऑन द स्टार्ट टुडे पॉडकास्ट. उनका रियल विजन बहुत ही ग्रेट है. तो सर क्या आप अपने विजन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
मतलब ये विजन के बारे में एज सच कुछ ऐसा रॉकेट साइंस या डिटेल्ड अप्रोच नहीं है. दिस इज वन ऑफ द पर्पस जो यू नो यू कैन कॉल इट अ विजन, यू कैन कॉल इट वन ऑफ माय पर्पस दैट यू नो व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, इन माय करियर ऑन अ प्रोफेशनल लेवल एंड समवेयर दैट आई कैन मेक एन इम्पैक्ट टू दीज एंटरप्रेन्योर्स, टू द यंग फाउंडर्स. जैसे कि आप हो, यू आर 20 ईयर्स ओल्ड. You know, probably we are going to talk about your startup very soon. So somewhere where I can help these people in whatever capacity. Shayad sab 1000 startup ka fundraise nahi hoga, which is practically nahi hone wala hai. But I can help them to grow. I can give them very good advice ke aap business ko kaise grow kar sakte ho, kaise apni planning kar sakte ho, how you should draw down your vision in terms of numbers. आप कैसे अपना प्लान कर सकते हो, हाउ टू बिल्ड योर रेवेन्यू मॉडल, आप वैल्यूएशन कैसे कर सकते हो. सो देयर आर मल्टीपल फैसेट्स इन व्हिच अ हेल्प कैन बी डन टू द विजन, द नंबर दैट वी हैव सेट आउट देयर. ये इसके पीछे और दूसरा कोई लॉजिक नहीं. इट इज जस्ट समथिंग व्हिच आई ऑनेस्टली फेल्ट फ्रॉम द हार्ट कि यू नो दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू ओवर द नेक्स्ट यू नो 8 years, 10 years, एंड दिस इज वेयर आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट to the society in my manner, you know, in my particular way. So, वही basic reason है. और कोई ज़्यादा rocket science नहीं है. कोई ऐसा target based हमारा काम नहीं है. But this is my personal vision कि ये मुझे achieve करना है. It's a purpose that I have, you know, kind of set for myself.
No, sir, it's really amazing. Actually, मेरा भी ऐसा था कि हमारे इंडिया में startup leader करते totally नहीं मिलता है, नहीं मिलता. तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम बड़े बड़े लोगों से बात करें जिनके पास रियल एक्सपीरियंस है, उनसे उनके पास से हिंदी में जाने की स्टार्टअप या फिर बिजनेस ग्रो करते. सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड इन द हिंदी. तो सर आपने कहा कि चार स्टार्टअप को आपने फंड रेजिंग में हेल्प किए, तो क्या आप उनके नाम वगैरह बता सकते हो? और आप बता सकते हैं उनका बिजनेस मॉडल वगैरह क्या था? और इन्वेस्टर को हम पहले पिच करते हैं वो कौन कौन सी मेन बातें हैं वो देखते हैं बिफोर द गिव द फंड।
तो मैं नाम तो इतना मतलब सबका नाम बताना यूज ऑन माय वेबसाइट आल्सो, सो नाम आई वुड नॉट वांट टू से इट आउट हियर बिकॉज़ सबके स्टार्टअप्स के अलग अलग चीज होते हैं, बट आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। ओके जो हमारा जनरल टिकट साइज रहता है टू रेज फंड्स इज बेसिकली इट रेंजेस फ्रॉम आप बोल सकते हो 25-30 लाख से लेके अराउंड यू नो 1.5 मैक्सिमम 2 करोड़ तक का हमारा टिकट साइज रहता है। और यही टिकट साइज में सब स्टार्टअप के फंडिंग हुए हुए यू नो यही सब टिकट साइज में बेसिकली हम लोग प्ले करते हैं। सो दिस इज वेयर वी आर प्लेइंग करेंटली यू नो इन टर्म्स ऑफ द टिकट साइज।
ओके ओके सर। सर सर मतलब कि कैसा होता कि जब मैंने एकदम स्टार्ट किया था तो मुझे भी लगा था कि चलो आइडिया है हमें फंड वगैरह ले लेने थे, हमें सबको पिच वगैरह करना चाहिए और उनका पैसा उठा ले। तो सर एग्जैक्टली आपके अकॉर्डिंग तो स्टार्टअप को फंड कब रेज करना चाहिए?
मेरे अकॉर्डिंगली स्टार्टअप्स को फंड रेज करना चाहिए जब उनके पास थोड़ा ट्रैक्शन आ जाता है। एक तो उनका प्रोडक्ट रेडी है। ओके मैं फुल प्रोडक्ट नहीं बोलूंगा, शायद एमवीपी की बात करते हैं, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, और उनके पास कुछ ट्रैक्शन है दिखाने हमको इन्वेस्टर्स के पास, तब जाना चाहिए जब हमारे स्टार्टअप के अंदर कुछ ट्रैक्शन है, कुछ है उनको दिखाने के लिए कि नहीं ये स्टार्टअप में ऑलरेडी हमारे पास कोई ना कोई ट्रैक्शन है, कोई ट्रांजेक्शन हुए है, रिकॉर्ड है, यू नो डेटाबेस है, एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी हमें फंड चाहिए एंजल इन्वेस्टर्स से इसको स्केल करने के लिए। पर काफी बार क्या होता है कि लो फाउंडर्स के पास आइडिया आता है, वो कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं वो डेवलप करते समय, पर उधर फंड रेजिंग करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है अंटिल अनलेस आप कुणाल शाह ऑफ क्रेड हो या फ्री चार्ज के कुणाल शाह हो आप, यू नो जीरो धाके हो आप। तो ये सब चीज के अंदर जब ऐसे फाउंडर्स होते हैं जिनका ऑलरेडी कोई प्रूवन मैट्रिक्स है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाई इन्होंने ऑलरेडी प्रीवियस स्टार्टअप में बिजनेस किया, फंडिंग ली, इन्वेस्टर्स को एग्जिट लिया और कंपनी अच्छी तरह से चला के यू नो इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिया, तो अभी वो दूसरा स्टार्टअप कर रहे हैं तो वो दूसरे स्टार्टअप में आइडिया पे ही लोग पैसा लगा देंगे। ओके तो अंटिल अनलेस आपके पास ऐसा है प्रैक्टिकल बेसिस पे ये पॉसिबल नहीं होता। प्रैक्टिकली आपके पास जब ट्रैक्शन आ जाता है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, ओके आपका प्रोडक्ट का डिमांड बहुत अच्छा है, काफी अच्छा डिमांड है, तो आपको आप इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे तो आपके चांसेस अच्छे हो जाते हैं।
तो सर आपने बात करी कि एंजल, सर हमने बात की कि एंजल फंडिंग एंड वीसीज, राइट? तो काफी सारे लोगों के पता नहीं होता कि एंजल क्या होते हैं, दोनों में मतलब कि दोनों करते हैं इन्वेस्ट करते कहां पड़ता है?
हाँ तो ये भी बेसिकली बहुत ही सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये चीज। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जब एंजल इन्वेस्टर्स प्रीडोमिनेंटली इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, अगर कोई बिजनेसमैन हो, कोई सीएक्सओ लेवल पे कम मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हो, कोई एचएनआई होते हैं, सो दीज गाइज आर कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर्स। बेसिकली वो लोग एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में इन्वेस्ट करते हैं। ओके जैसे वो लोग स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, वैसे ही वो लोग एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, एक स्टार्टअप में। ओके एसेट क्लास अलग है, तो इनको एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। ये लोग जनरली कब इन्वेस्ट करते हैं, जब आपका जो स्टेज में हम लोग एक्टिव है ना, जैसा मैंने बताया कि आपका ट्रैक्शन आ जाता है, फिर आप एंजल इन्वेस्टर्स को पिच कर सकते हो। तो दीज गाइज इन्वेस्ट एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, जिनका टिकट साइज अराउंड 20-25 लाख से लेके आप समझिए कि 1.5-2 करोड़ तक का रहता है, तो ये टिकट साइज में एंजल इन्वेस्टर्स खेलते हैं प्रीडोमिनेंटली। थोड़े लोग उससे ऊपर भी होते होंगे, थोड़े लोग उससे नीचे भी होते होंगे, लोग 5-5 लाख से भी टिकट साइज से करते हैं इन्वेस्ट, बट प्रीडोमिनेंटली आप ये टिकट साइज पकड़ लो तो ये एंजल इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, जो अर्ली स्टेज पे एक स्टार्टअप को बैक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वेंचर कैपिटल फंड, जो कि एक बार ये राउंड खत्म हो जाता है, एंजल राउंड जिसे बोलते हैं, उसके बाद जनरली वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स प्ले करते हैं और वो लोग पिक्चर में आते हैं, जब वो लोग से $500,000, $1 million, $2 million के टिकट साइज में खेलते हैं और वो लोग उतना फंडिंग लेके आते हैं। जब आपका एक आइडिया एक लेवल तक स्केल हो चुका है एंजल इन्वेस्टर के फंडिंग से, आप एक लेवल तक पहुंचा चुके हो, उसके बाद वेंचर कैपिटल फंड की एंट्री होती है, आप फिर उनको पिच कर सकते हो कि यू नो वो लोग फिर $700,000, $1 million, $2 million की टिकट साइज के साथ वो लोग इन्वेस्ट करते हैं. सो दोज आर कॉल्ड द वेंचर कैपिटल फंड्स. अभी वेंचर कैपिटल फंड्स क्या होता है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो लोग एक प्रॉपर फंड होते हैं. तो उनकी प्रॉपर एक टीम होती है, जैसे कोई सेक्टर के अगर वो लोग कोई वेंचर कैपिटल फंड है जो सिर्फ कंज्यूमर सेक्टर को फोकस कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू ओनली इन्वेस्ट इन कंज्यूमर सेक्टर कंपनीज और स्टार्टअप्स, टेक, कंज्यूमर टेक जिसे बोलते हैं, तो उनकी दो तीन जन की एनालिस्ट की टीम रहेगी या एक दो जन की जो कंज्यूमर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को फिल्टर करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उनके राउंड्स होते हैं पार्टनर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ, और फिर वो लोग ट्राई करते हैं क्लोज करने के लिए. दैट इज हाउ देयर स्ट्रक्चर वर्क्स. तो उनकी एक टीम रहती है, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. तो क्या होता है कि वो लोग उस तरह से काम करते हैं, जबकि एंजल इन्वेस्टर्स का कोई टीम नहीं है. वो लोग इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे फाउंडर से, ट्राई करेंगे एनालाइज के उनके जो नॉलेज में आता है, और अकॉर्डिंगली क्लोज करेंगे या नहीं करेंगे डील वैसा.
ओके सर, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस. और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि काफी लोगों को ये भी डाउट होता है कि सीड फंडिंग क्या होती है और जो सीरीज फंडिंग होती है, एबीसी सीरीज वगैरह फंडिंग वगैरह कुछ करते लोग, तो उनमें डिफरेंस क्या होता है.
तो अगेन मतलब सीड फंडिंग सीरीज ए सीरीज बी इज अ पार्ट ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग. तो जैसे जैसे टिकट साइज बढ़ता है और जैसे जैसे आप आगे ग्रो करते हो, आपको हायर टिकट साइज चाहिए, तो बस वो स्टेज है. आप जैसे मैं बहुत ही आसान भाषा में पुट करूंगा, सीड कैपिटल होता है जब आप नर्सरी में एडमिशन लेते हो अपने बच्चे की. नर्सरी में आपने एडमिशन लिया, तब वो ग्रो कर रहा है अपना, मतलब उसके दिमाग थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है, उधर वो टीचर्स उसको खिलाती है, यू नो नर्सरी प्ले ग्रुप जो बोलते हैं. उसके बाद आता है एंजल इन्वेस्टमेंट, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हो या सीनियर केजी में, जूनियर केजी में जाते हो, तो वो एंजल इन्वेस्टमेंट हो जाता है. उसके बाद सीरीज ए मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड हो गया, राइट, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड सीरीज ए हो जाता है. फिर आप और बढ़े जाते हो, मतलब आप ग्रो कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, इंटेलेक्चुअली ग्रो कर रहे हो, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपकी पढ़ाई बेटर हो रही है, तो आप थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड में जाते हो, तो उसको बोलते हैं सीरीज बी. फिर आप सिक्स सेवन्थ एट्थ में जाते हो तो सीरीज सी. और कुछ है नहीं, सब में, सब सीरीज में आपको पैसा ही मिल रहा है, हर स्टैंडर्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो, खाली थोड़ा लेवल बढ़ाता जा रहा है. आप यहाँ पे सिक्स स्टैंडर्ड से शायद अलग सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके स्कूल के अंदर जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में नहीं थे, यू नो नाइन्थ और टेंथ में आपको और डिफिकल्ट आ जाएंगे, जैसे साइंस का ब्रेकडाउन हो जाएगा, यू नो यू विल बी गेटिंग फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री नाइन्थ और टेंथ में या एट्थ नाइन्थ टेंथ में, तो वो सीरीज सी हो जाएगी. तो लेवल थोड़े बढ़ते जाते हैं, आपको यहाँ पे पढ़ाई ज्यादा मिलती जाती है जैसे आप बढ़ते जाते हो, यहाँ पे आपको पैसे ज्यादा मिलते जाते हैं, पैसे मिलते हैं तो उसका एक प्रेशर भी रहता है कि आपको परफॉर्मेंस भी वैसे देना है. जैसे आपका नाइन्थ और टेंथ का प्रेशर रहता है, आपके बोर्ड जा रहे हैं टेंथ में, तो वो सीरीज सी सीरीज डी की फंडिंग हो गई. जितना आप ज्यादा ग्रो करते जाओगे उतना यू नो यू विल बी रिसीविंग मोर मनी एंड ऑब्वियसली आफ्टर देन परफॉर्म ऑल्सो अकॉर्डिंगली. एज सिंपल एज दैट, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं इसमें. ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशंस बदल जाते हैं, थोड़े टर्म्स बदलते हैं, जो नए फंड आ रहे हैं या पुराने फंड है तो वो लोग टर्म्स अपने हिसाब से डालते हैं और वो बदलते रहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, कि आपको कितना स्टेक देना पड़ेगा, कितना डाइल्यूट करना पड़ेगा. वो सब मैं इंट्रिंसिक में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो उसके जो डील शीट होती है, टर्म शीट होती है, अग्रीमेंट होता है, यू नो दैट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड टू एक्सप्लेन ऑन अ पॉडकास्ट, और वो बहुत ही डिटेल्ड होता है, तो मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा. वो हर डील का अग्रीमेंट अलग रहता है, इन्वेस्टर के साथ आपकी अग्रीमेंट और रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अग्रीमेंट कर सकते हो, यू नो आपका रिलेशनशिप एक बॉन्ड कैसा फॉर्म हुआ है, हाउ सपोर्टिव द इन्वेस्टर्स आर, तो वो सब चीज अलग चीज हो जाती है. बट इट्स वेरी सिंपल. आप एक स्कूल में यू नो अपने बच्चे को डाल रहे हो, या अगर आप यू नो यू कैन जस्ट इमेजिन योर सेल्फ एज ग्रोइंग इन अ स्कूल, तो आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, तो इट्स एज सिंपल एज दैट. फ्रॉम सीड इन्वेस्टमेंट टू सीरीज डी, सीरीज ई, सीरीज एफ, आप वो सीरीज का भी कोई ठिकाना नहीं है, आप जितना लंबा तक खींचोगे उतने लंबे तक होगा.
Exactly.
फिर अल्टीमेट आईपीओ आ गया. आईपीओ मतलब जैसे अभी पेटीएम का आ रहा है, शायद होपफुली ज़ीरोधा ने तो ना बोल दिया है, पर पेटीएम का अभी आ रहा है, तो वो आप समझो कि आप ग्रेजुएट हो गए, एज सिंपल एज दैट. टिप तो नहीं है, मैंने खुद ने पर से स्टडी नहीं किया इतना, मैं टिप तो नहीं दूंगा बिकॉज आप अपने हिसाब से प्लीज स्टडी कीजिए उसको. बट व्हाट आई कैन से इज दैट प्लीज ध्यान से इसमें इन्वेस्ट करना. जब आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, हिस्टोरिक प्रॉफिटेबिलिटी को स्टडी करना, उसके रेशियोज देखना बराबर, और यू नो आगे की प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा एनालाइज करना, दिमाग लगाना बहुत ही सिंपल है, नथिंग रॉकेट साइंस. जो कंपनी बरसों से लॉस करी जा रही है, उसका नेटवर्थ नेगेटिव है, यू नो हाउ देर बी एबल टू मेक मनी फॉर एन इन्वेस्टर, वो एक सोच लेना थोड़ा, मतलब अपने हिसाब से. ये आप इनडायरेक्ट टिप समझ सकते हो, पर अपने हिसाब से प्लीज सोच लेना कैसे वो कंपनी डिलीवर कर पाएगी परफॉर्मेंस बेसिकली. और मैंने एक चीज सीखा है, जो कंपनी एटलीस्ट स्टार्टअप स्पेस में, शायद लिस्टेड स्पेस में बहुत सारे एस्टेब्लिश ब्रांड्स और कंपनीज है, पर मैंने एक चीज सीखा है, जो कंपनी कैश बर्न करके कस्टमर्स को अक्वायर करती है, वो इन्वेस्टर को कभी डिलाइट नहीं कर पाएगी. सो यू कैन आइदर डिलाइट द इन्वेस्टर और द कस्टमर. आप कस्टमर को डिस्काउंट 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 देते जाओगे तो इन्वेस्टर खुश नहीं रहेगा, और अगर आप यू नो स्टेबिलिटी करके करोगे जिसमें कस्टमर का भी थोड़ा अच्छा फायदा होगा तो इन्वेस्टर को भी फायदा मिलेगा.
लेकिन जो मेन बातें थी वो थी फीडबैक की, तो आप सर क्या फीडबैक के कुछ टिप्स वगैरह दे सकते हो कि एग्जैक्टली हमारे फीडबैक में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जो कि इन्वेस्टर देखता ही देखता है?
सो इन्वेस्टर सी बेसिकली फाउंडर्स का कंटेंट है ना बहुत अच्छा ही रहता है. मैंने मतलब आई थिंक 90% ऑफ द जो पिच डेक्स हमारे पास आते हैं उनका कंटेंट तो ठीक ठाक ही रहता है, क्योंकि उनको नॉलेज रहता है अपने इंडस्ट्री के बारे में. 10% ही लोग होते हैं जिसको वो भी नॉलेज नहीं रहता कि अपने इंडस्ट्री के बारे में लिखना क्या है, यू नो. पर जनरली सब फाउंडर्स रिसर्च करते हैं कि भाई मेरा कॉम्पिटिशन कौन है, मेरे इंडस्ट्री में क्या है, मेरा खुद का बिजनेस मॉडल कैसा है, ओके, मेरा मार्केट साइज क्या है, प्रॉब्लम कौन से है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सोल्यूशन क्या है जो मैं दे रहा हूँ लोगों को. तो वो सब चीज जनरली लोगों के पास होता ही है, ओके. पर क्या चीज मिसिंग होती है ना, वो एक्स फैक्टर जो बोलते हैं, ठीक है, वो होती है कि ब्यूटिफिकेशन नहीं होता है, ओके. जैसे अगर आप एक यू नो अगर आप एक लड़की के साथ डेट पे जा रहे हो, ठीक है, और सामने तो लड़की है, ठीक है, पर अगर वो ब्यूटीफुली ड्रेस नहीं है, ओके, इफ शी इज नॉट लुकिंग प्रिटी, इफ शी इज नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, सो हाउ विल यू बी इम्प्रेस्ड, एंड वाइस वर्सा. अगर एक लड़की लड़के को डेट पे मिल रही है, उसको तो पता है कि भाई लड़का आ रहा है डेट पे, तो इन्वेस्टर को पता ही है कि भाई डेक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होने वाला है, उतना उसको आइडिया है, ठीक है. लड़के को पता है उसको उधर जाना है, स्टार्टअप फाउंडर को पता है कि मुझे ये सब कॉन्टेंट डालना है, ओके. पर लड़के को ये नहीं पता है कि भाई मैं ड्रेस कैसे करूँ, ओके, हाउ शुड आई इम्प्रेस दैट गर्ल, हाउ शुड आई वू दैट गर्ल, हाउ शुड आई टॉक टू दैट गर्ल, यू नो मैं कैसे उसको रिस्पेक्ट के साथ बात कर सकता हूँ, क्या बात कर सकता हूँ, हाउ कैन आई चार्म हर बेसिकली. सो इफ ही डज नॉट नो दैट, तो फिर वो आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है, जो फर्स्ट इंप्रेशन बोलते हैं दैट यू नो रिड्यूसेस. सो इट्स इन द सेम वे विद द डेक. व्हाट मेरे एक्सपीरियंस में जो हमने सीखा है इज दैट यू नो फाउंडर्स डोंट रियली ब्यूटिफाई द डेक. एक ब्यूटिफिकेशन होता है कि आप एकदम बढ़िया तरीके से बनाइए, उसके ग्राफिक्स बढ़िया होने चाहिए, डिजाइन अच्छी होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, तो वो सब बहुत मिसिंग होता है. तो यू नो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट के इन्वेस्टर फिर क्या देखेगा, मतलब उसका मनी उड़ जाएगा. जैसे मतलब यू नो आपको मेहंदी लगानी पड़ती है हाथों में, तो वो मेहंदी नहीं होगी तो आप कैसे लगोगे, मतलब.
एक्चुअली सर मेरा भी ऐसा था कि मोस्टली जो फाउंडर्स वगैरह टेक्निकल बैकग्राउंड से ज्यादा होते, उन्हें लगता है कि जस्ट वैल्यू पे फोकस करो, प्रोडक्ट पे फोकस करो, इनको कुछ देखने की जरूरत है. बिल गेट्स का एक कोड था कि मतलब कि चीज आपका प्रोडक्ट कैसा है उस पे, वो तो ठीक है ऑब्वियसली अच्छा हो रहा है, मतलब कि वो दिखना भी अच्छा था. ये
करेक्ट करेक्ट
या
दिखना भी अच्छा चाहिए ना, क्योंकि वो फर्स्ट इंप्रेशन तो उससे ही पता चलता है ना.
यस सर एक्जेक्टली.
मतलब अपने को लगता है कि यू नो क्यों लोग ऐसा सब देखते हैं ऑल दैट थिंग, पर प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल होता है.
राइट राइट सर. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं भी एक दो साल से स्टार्टअप या फिर बिजनेस वगैरह के फील्ड में हूँ, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि प्रोडक्ट ही जोके, टीम ही जोके, टेक्निकल स्टफ ही जोके, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो होती है स्किल. अगर आप स्टार्टिंग में सेल्फ पे फोकस नहीं कर पाए तो आप ग्रो में भी नहीं कर पाएंगे.
इनफैक्ट मैंने ये बुक पढ़ी थी ट्रैक्शन, जो मैं मेरे बहुत सारे मेंटीज को ये बोलता हूँ बुक पढ़ने के लिए. यू नो ये बुक में क्या है, ऑथर ने क्या लिखा है, इनफैक्ट स्टार्टिंग 15-20 पेज में ही उन्होंने ये लिखा है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ प्रोडक्ट, व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप, यू शुड बी इन्वॉल्विंग 50% ऑफ योर टाइम इन इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट एंड 50% शुड बी गोइंग इन मार्केटिंग इट बिफोर हैंड बिफोर इट इज लॉन्च्ड. आपके रिसोर्सेज 50% शुड बी इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड 50% इन मार्केटिंग. रिसोर्सेज मतलब आपकी टाइम, एनर्जी, टीम, पूरे टीम के एफर्ट्स, मनी, द कैपिटल जो आप इन्वेस्ट करने वाले हो बूटस्ट्रैप करने के लिए, वो सब कुछ. ओके, सो इट शुड बी 50% 50% फ्रॉम डे वन. ऐसा नहीं कि मैं प्रोडक्ट लॉन्च तक मैं पूरा का पूरा 100% पुट इन प्रोडक्ट. सो दैट्स हाउ नॉट इट शुड नॉट बी लाइक दैट. और मैंने ये हमारी अभी मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक रील डाला था, व्हेन आई हैव मेंशन्ड दिस सेम थिंग जो आपने अभी बताया कि व्हाट इज द नंबर वन स्किल व्हिच अ फाउंडर शुड बी हैविंग. इट्स नॉट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इट्स नॉट टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट यू नो व्हाटएवर द अदर थिंग्स. लीडरशिप स्किल भी नहीं है जो बहुत लोग बात करते हैं. लीडरशिप यू नो इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट सेल्स, सेलिंग स्किल.
एग्जैक्टली,
दैट्स द नंबर वन स्किल फॉर एन एंटरप्रेन्योर. और ये स्किल ऐसा नहीं है कि आप पैदाइशी ये स्किल आपके अंदर आती है. दिस इज अ लर्नेबल स्किल. देर आर मल्टीपल टूल्स टू लर्न द स्किल. बहुत सारी बुक्स है, किताबें हैं, आर्टिकल्स है, कोचिंग क्लासेस है. आप सेलिंग करना सीखिए, दैट्स द होल आइडिया.
यस एग्जैक्टली सर. और मतलब कि अगर मोर भी जो फाउंडर या फिर सीईओ तो ऑब्वियसली उसका फोकस उस पर होना चाहिए. तो मैंने भी अभी क्या किया है कि हमें ऐसा सोचना चाहिए कि इससे ओनली मेरा फायदा नहीं होगा, कंपनी का फायदा नहीं होगा, लेकिन मेरी जो भी टीम से उन सभी की फैमिली का भी फायदा होगा. तो अभी मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ. एक्चुअली हम एक मंथ के अंदर हमारी आईटी कंपनी और हमारी डिजिटल मार्केटिंग ऑफिशियली कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं. मैं उसका अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा. तो मैं फोकस ऐसा सोचता हूँ कि मैं ओनली अपनी सेल्स के बारे में नहीं ध्यान दे रहा, लेकिन मैं अपनी पूरी टीम्स की सेल्स के बारे में भी मैं ध्यान दे रहा हूँ. मतलब कि उनको भी वहां से ही पैसे मिलने वाले जो कि एफर्ट मैं लगाऊंगा. तो आई थिंक अगर हम ऐसा सोचेंगे तो डेफिनेटली सेल्स में हम ज्यादा फोकस कर पाएंगे और उसे क्लोज भी कर पाएंगे.
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. एंड बाय द वे आई लाइक द वे हाउ यू पुट योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर्म इन दिस. तो वो एक तरीका है मार्केटिंग का, तो वो बहुत अच्छी तरह से आपने डाला यहाँ पे. दैट्स अ गुड वन. एंड बट एज यू राइटली सेड, आपका विजन इज नॉट ओनली टू कि भाई मैं एक क्लाइंट को क्लोज करूँ, दो क्लाइंट को क्लोज करूँ, इससे बात करूँ, उसको क्लोज करूँ. यू नो इट्स दैट मैं भी ये चीज में स्टार्टिंग में था. यू नो इनफैक्ट मे बी से अराउंड 9-10 months, एक साल पहले मैं यही चीज के अंदर था कि कैसे क्लोज करूँ, कैसे क्लोज करूँ. बट वो पर्सपेक्टिव रॉन्ग होता है. वेन यू थिंक अबाउट अ लार्जर पिक्चर, ओके, यू वॉन्ट टू हेल्प दिस 1000 स्टार्टअप. आपको 1000 फाउंडर्स को हेल्प करना है कोई भी जरिए में, चाहे वो फंड रेजिंग हो, मेंटरिंग हो, ग्रोथ हो, स्केलेबिलिटी हो, मेंटर जो भी हो. ओके, आई वांट टू हेल्प देम इन सम मैनर. फिर मतलब वो सबसे लार्जेस्ट विजन है. ओके, लार्जर पर्पस ऑफ माय लाइफ है एक तरीके से. फिर आप ये सब छोटे छोटे चीज को पकड़ना छोड़ दोगे कि मुझे इसको ही क्लोज करना है, नेक्स्ट वीक मुझे इसको क्लोज करना है. यू विल नॉट बी टारगेटिंग सच पीपल के नहीं मुझे भाई उसको क्लोज करने का. इट विल बी योर विजन एंड योर पर्पस इज लार्जर कि हाँ मेरे वजह से अगर मैं मेरे 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 कंपनी के द्वारा अगर मेरे टीम मेंबर्स का फायदा हो रहा है, मेरे इम्प्लॉयज का फायदा हो रहा है, दे आर बींग एबल टू यू नो लर्न समथिंग, अर्न समथिंग फ्रॉम माई कंपनी, मेरे स्टेक होल्डर्स जो भी है, क्लाइंट्स को फायदा हो रहा है, यू नो इन व्हाटएवर कैपेसिटी, तो वो एक चीज अच्छा एक पर्पस बन जाता है. और वो आपको ड्राइविंग फैक्टर होता है कि दैट विल हेल्प यू. आप अनकॉन्शियसली ज्यादा क्लोज करोगे, नॉट विद दैट कॉन्शियस, नॉट विद दैट फीलिंग के नहीं मुझे क्लोज करना है, क्लोज करना है. बट अगर आपका जब पर्पस कुछ हायर रहता है, इट्स अ हायर पर्पस, ओके, तो आप अनकॉन्शियसली यू विल बी सबकॉन्शियसली सॉरी नॉट अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आप ज्यादा बेटर तरीके से लोगों को अप्रोच कर पाओगे, लोग आपकी इज्जत ज्यादा करेंगे, और इन रिटर्न वो आपको ज्यादा काम देने में, आपके साथ काम करने में उनको ज्यादा मजा आएगा. सो दैट इज द होल आइडिया.
और हमें अंदर से भी खुशी मिलेगी कि यस अगर
एब्सोल्युटली. एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स दैट यू कैन गेट व्हेन यू सक्सेसफुली डू दैट थिंग फॉर समवन एंड समवन हैज दैट होप ऑन यू. जब उनकी उम्मीद रहती है आपसे यू नो और आप उस पर डिलीवर कर सकते हो इन वॉट एवर कैपेसिटी है यू नो, तो वो एक फीलिंग भी अच्छी खासी रहती है. फॉर श्योर आई कम्प्लीटली अग्री विद यू.
थैंक यू सर. और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने कहा स्टार्टिंग से पता है कि आप स्टार्टअप को फंडिंग वगैरह में हेल्प करते हैं, तो सर आपका क्या अपना खुद का नेटवर्क जहाँ पे आप इन्वेस्टर के साथ कनेक्शन वगैरह है, आप ये बिजनेस कैसे करते हैं या फिर उनको कॉल ईमेल वगैरह करते हैं?
बेसिकली ये हमारा नेटवर्क ही है, यू नो, जो हम लोग रेगुलरली बिल्ड कर रहे हैं और ज़्यादा बिल्ड करना है, एक रिलेशनशिप बनाना है विथ इन्वेस्टर्स, यू नो, विथ आगे जाके वेंचर कैपिटल फंड मैनेजर्स ऑल्सो, क्योंकि हमें बड़े टिकट साइज में भी जाना है, शायद एक साल में, डेढ़ साल में, दो साल नहीं है पर जाना है वहाँ पे भी, ताकि हमारे एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स का हम सेकेंड राउंड भी कर सके, यू नो, और हम बड़े टिकट साइज में भी खेल सके. बट यही चीज़ है, हम लोग कोशिश यही रहती है कि हम रेगुलरली इन्वेस्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर सके और रिलेशनशिप डेवलप कर सके, मेंटेन कर सके, और उनको हमारे डील्स दिखा सके ताकि वो उनको पसंद आए तो वो क्लोज करने में, मतलब उनको पसंद आए तो वो एक्चुअली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली, राइट? सो दैट इज आवर यू नो मेंटालिटी ऑल्सो. हम रेगुलरली उस पर फोकस करते हैं टू गेट इन टच विद मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स. और ये एक रेगुलर एक्टिविटी है, ये नेवर एंडिंग एक्टिविटी है, मतलब यू नो, क्योंकि ऐसा कोई इंडिया में चीज ही नहीं है कि सिर्फ 1000 इन्वेस्टर्स है, तो 1000 के बाद कोई कैपेसिटी नहीं है.
Yes,
so it's a never going activity.
इतना इंडिया ज्यादा ग्रो कर रहा है, उतने ही ज्यादा इन्वेस्टर वगैरह और भी मार्केट में आ रहे हैं हर साल.
और
सर एक सी को एक बुक जो कि आप किसी इन्वेस्टर या फिर किसी बिगनर फाउंडर को सजेस्ट करना चाहे कि जो कि उसे डेफिनेटली पढ़नी चाहिए अगर उसे स्टार्टअप या फिर बिजनेस करना हो तो?
मेरे पास है ना एक्चुअली बहुत सारी बुक्स है जो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, नॉट ओनली वन. यू नो आई वॉज आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो उनको पढ़ना चाहिए, ओके, जो फाउंडर्स को, इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स के पास थोड़ा नॉलेज रहता ही है तो मैं फाउंडर्स को ज्यादा केटर करूंगा ये बुक्स के लिए, यू नो, जो उनको पढ़ना चाहिए इज समथिंग जो मैंने मैंने पढ़ा था, विच वॉज माई फर्स्ट बुक, आई थिंक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाउंडर्स टू अंडरस्टैंड. एक पर्सनल फाइनेंस की बुक है, रिच डैड पुअर डैड करके,
रिच डैड, यस, बहुत फेमस बुक है.
तो आई थिंक वो बुक उन्हें पहले पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे उनको माइंडसेट एक सेट होएगा कि मनी का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि काफी फाउंडर्स है ना वो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से होते हैं. सो आई वुड रियली एडवाइस देम टू रीड दिस बुक बिकॉज ये आपकी पहले दिमागी माइंडसेट ठीक करेगी रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग एसेट्स, रिगार्डिंग लायबिलिटीज, ओके, रिगार्डिंग इनकम फ्लो, कैश फ्लो. वो आपको एक माइंडसेट देगा कि भैया आपको लाइफ में पर्सनल लेवल पे मनी को कैसे हैंडल करना है और रिस्पेक्ट कैसे करना है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ठीक है? फिर आपका माइंडसेट और थॉट प्रोसेस कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा पैसे के बारे में. तो आप पहले ये बुक पढ़िए, ओके, एक पर्सनल फाइनेंस पे, फिर स्टार्टअप फाइनेंस की या स्टार्टअप की बात करूंगा. देयर इज अनदर बुक देन विच इज कॉल्ड द ई मिथ विच इज बाय माइकल गर्बर. ये बुक ने लिटरली स्पीकिंग मेरा थॉट प्रोसेस बदल दिया फ्रॉम बींग अ सोलो फाउंडर टू नाउ हैविंग अ टीम ऑफ सिक्स पीपल अंडर मी and now we are growing also, you know. Ye book is responsible, it was suggested to me by a very very close friend of mine. Mere best friend se ye book suggest ki gayi thi approximately 1.5-2 saal pehle aur main ye implement karta hu. Uska tagline hi ye hai ki why small businesses don't work and what to do about it. तो ये आपका माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज कर देगा, आपको एक सोलो फाउंडर स्टार्टअप से आप कैसे ग्रो कर सकते हो टू मल्टीपल पीपल अराउंड यू, मोर वर्क अराउंड यू, एंड यू नो टू डू ग्रेट बिजनेस बेसिकली, यू नो, एंड सर्व योर सोसाइटी इन व्हाटएवर मैनर. तो आई थिंक ये दो बुक है विच हैज चेंज माई लाइफ. रिच डैड पुअर डैड ने मेरी थॉट प्रोसेस रिगार्डिंग पर्सनल फाइनेंस और मनी के बारे में चेंज कर दी थी जब मैंने वो बुक पढ़ी थी 2-2.5 साल पहले. मैं ज्यादा बुक रीडर हूँ नहीं, अभी मैं ज्यादा बुक्स पढ़ रहा हूँ, मतलब कोशिश कर रहा हूँ और पढ़ने की, वरना आई एम नॉट अ वेरी एविड रीडर बट आई वॉन्ट टू मेक दैट अ मोर हैबिट. और ये द ई मिथ है जो मेरा माइंड सेट रिगार्डिंग बिजनेस के बारे में चेंज कर दिया था. तो आई वुड सजेस्ट समवन टू रीड दीज टू बुक्स, स्टार्ट विद पर्सनल फाइनेंस देन गो टू ई मिथ. बाकी देयर आर मल्टीपल बुक्स यार, आपको सेल्स के बारे में जानना है रीड द बुक कॉल वे ऑफ द वुल्फ, इट्स ऑन जॉर्डन बेलफोर्ट, जो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जो पिक्चर जिसमें बनाई गई है. ही इज बेसिकली दुनिया के वो सबसे बेस्ट बेहतरीन सेल्स ट्रेनर में से एक है जो रियल लाइफ वुल्फ है बेसिकली, जॉर्डन बेलफोर्ट. आप उनका पढ़ सकते हो टू इम्प्रूव योर सेल्स एंड टू इम्प्रूव योर टॉकिंग स्किल्स, टोनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज. सो इट्स वेरी वेरी गुड. द 10x रूल है ग्रैंड कार्डोन का, यू नो देर आर मल्टीपल बुक्स यार, मतलब मैं लूंगा तो यू नो इट विल बी अनदर पॉडकास्ट ऑल टुगेदर, वी शुड डू अनदर पॉडकास्ट ऑन बुक्स.
थैंक यू सो मच सर फॉर आपने बुक्स वगैरह से. एक्चुअली थैंक्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक मैंने ओनली 22 बुक्स ही पढ़ी और मेरी 23rd बुक अभी मेरी रिसेंटली चल रही है, उसका नाम है बेबी रन का सब सभी राजनी. तो
कौन से बुक है आपकी 23rd?
बेबी लोन का सबसे अमीर आदमी, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द बेबी लोन.
अच्छा ओके ओके वाओ ग्रेट.
तो सर उसमें
मैं अगली बुक आपकी पढ़ूंगा द लिंक्डइन ग्रोथ के ऊपर.
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. तो फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाह रहा था कि जब मैंने अप्रोक्सीमेटली 11 या फिर 15 जितनी बुक्स कंप्लीट कर ली थी ना, तब से मेरी अर्निंग आना स्टार्ट हो गई थी. तो मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहा था, लेकिन बुक ऑटोमेटिकली आपको ऐसा करने पे मजबूरी कर देती है. आई वॉन्ट ऐसा माइंड सेट बिल्ड करती है. एक्चुअली बुक्स हमें ना ओनर माइंड सेट बिल्ड करती है हमेशा. तो आप भी मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज आपकी डेली, मतलब कुछ मेरी एक हैबिट है कि डेली के मैं 10 पेजेस ही पढ़ता हूँ, मैं ज्यादा नहीं पढ़ता. मतलब कि 10 पेजेस ओके, तो आप भी ऐसी कुछ हैबिट बना कर सकते हो स्टार्टिंग में कि डेली ओनली
डेली डेली कितने पेजेस पढ़ते हो?
10 पेजेस सर.
10 pages, that's absolutely perfect. I think बस slow and steady wins the race वाली बात है. Slowly slowly habit develop कीजिए और it will really you know change your mindset regarding things and it will give you a different perspective. It's very good for sure.
थैंक यू सर. एक्जैक्टली. तो जो भी सर ने हमें बुक रिकमेंड की वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, अगर आपको चेकआउट करना तो उसे चेकआउट कर सकते. सो सर एट द एंड ऑफ अवर पॉडकास्ट एक प्रो टिप हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए. बाय द वे हमारी मोस्टली जो थे ना ओनली 18 to 22 years की ओल्ड है. तो उसके लिए अगर
अच्छा, आप यंग ऑडियंस मतलब आपके एज की जैसी है. वाओ. सो आई थिंक वन टिप तो जो आपने बताई रीड. I think once you start learning, you start earning. Okay, yes. So that is wonderful. Aap please padhiye, matlab you know whoever is listening to this, you must start reading on anything. And the other thing what I would like to tell you is, guys, मैं ये बहुत सारे interviews में और बहुत सारे लोगों के साथ जो भी मैं YouTube पे या you know podcast पे have said, this one thing I'll keep it constant. अगर आप बस वही 21-22-23 साल के लोग हो यू नो एंड आप सोच रहे हो आपको कुछ स्टार्टअप करना है, आपको कुछ फाउंड करना है, यू नो यू हैव एन आइडिया, इट्स वेरी गुड. मैं शायद जब 21-22 साल का था ये मैं सोच भी नहीं रहा था. यू नो मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था तब. बट बहुत अच्छी बात है आप ये ऐसा सोच रहे हो, आपका दिमाग इस लेवल का है कि आप सोच पा रहे हो, आप आइडिया जनरेट कर पा रहे हो. बट एट द सेम टाइम मैं ये बोलूँगा कि देर इज ऑलवेज द राइट थिंग टू डू एट द राइट टाइम. ओके अगर आप आइडिया को सीधा मार्केट तो वो थोड़ी गलत सोच हो जाती है और वो ये एक बबल में है. अभी भी काफी फाउंडर्स है जो ऐसे बबल में है कि अगर आइडिया जनरेट होता है तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे. ओके सो ऐसा होता नहीं है बेसिकली. पार्ट यू नो जस्ट फॉर ऑल द ऑडियंस लिसनिंग, यू नो आप प्लीज व्हाट यू शुड बी डूइंग बिफोर आप इन्वेस्टर्स के पास जाइए, बिफोर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, आपके पास ये 2-3 चीज एसेंशियल होनी चाहिए. एक तो होता है थोड़ा एक्सपीरियंस मार्केट में. अगर आपका पैशन है कुछ, आप एडटेक सेक्टर में कुछ करना चाहते हो, एजुकेशन सेक्टर में, यू नो और आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई आइडिया है, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक्सपीरियंस कीजिए 1 साल का 2 साल का 3 साल का. वो एक्सपीरियंस के साथ होगा क्या, आप अपने आपको कुछ सीखने को मिलेगा नंबर वन, आपके कोई कॉन्टेक्ट बनेंगे, नंबर टू नेटवर्क बनेंगे, और नंबर 3 आपके पास कुछ कैपिटल इकट्ठा होएगा. ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिफोर आप स्टार्ट कीजिए आपके पास ये 3 चीज हो, कुछ कुछ लर्निंग्स हो जिसमें आपने मिस्टेक की हो. तो बेस्ट चीज है ना, आपने किसी और के कंपनी में मिस्टेक करके आए तो बहुत अच्छी बात है, आपने अपने कंपनी में वो मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे. सो वो बहुत बढ़िया बात है. दूसरी बढ़िया बात है आपने वहां पे जाके नेटवर्क बनाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है. आपने किसी और के यूटिलाइज करके आपने अपने नेटवर्क बनाए. मैं ये नहीं प्रमोट कर रहा हूँ कि आप उसके क्लाइंट्स छीन के अपने क्लाइंट्स बना लो, नॉट लाइक दैट, बट नेटवर्क डेवलप करो, रिलेशन बनाना सिखाओ सीखो. और तीसरी बात हो गई कोई आपको पे कर रहा है सीखने के लिए तो आपका कैपिटल इकट्ठा हो रहा है. ये तीनों चीज फिर आप 2 साल के बाद 3 साल के बाद आके अपने बिजनेस में लगाओ और फिर आप देखोगे यू विल बी एबल टू यू नो रन दैट बिजनेस मच मोर बेटर. और अभी आप अटकोगे नहीं, आप 3 साल पहले अटकते कि यार मैं कैसे करूंगा, मैं यू नो मैं मेरे को इन्वेस्टर चाहिए, फंड चाहिए, यू नो हाउ विल आई डू इट एक्सेट्रा. सो वो
पटकोगे नहीं. ओके सो दैट इज समथिंग दैट वन शुड बी डूइंग.
एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच देवान सर, आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे लिसनर्स को सिखाया, हमारे ऑडियंस को सिखाया, आपने इतनी सारी टिप्स वगैरह दी. थैंक्स अ लॉट सर.
थैंक यू पार.
यस सर. सो गाइस, टिल द नेक्स्ट एपिसोड, वी विल ग्रो टुगेदर. बाय बाय.